Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak.
नमस्कार मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद है अनुभा रोहतगी.
थैंक यू मनोज. Benchmark domestic indices decline, Sensex falls nearly 1100 points, Nifty settles at 24,450. India's forex reserves surge to all-time high of nearly $729 billion, and global crude oil prices surge.
घरेलू शेयर बाजार में कल हुई तेजी के बाद आज फिर गिरावट. सेंसेक्स लगभग 1100 अंक के आसपास फिसला, निफ्टी 24,450 दर्ज हुआ. देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा, $729 अरब के आसपास पहुंच गया है अपना विदेशी मुद्रा भंडार. और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी.
And before we begin with the top story of the day, there's an announcement for our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और आइए अब शुरू करते हैं घरेलू शेयर बाजार में आज के हालचाल से खबरों का सिलसिला. बाजार में कल रौनक दिखी थी लेकिन आज फिर बिकवाल हावी हो गए. कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में किसी प्रकार के राहत के संकेत नहीं मिलने से बाजार में अनिश्चितता आज भी बनी रही. प्रमुख सूचकांक 1.3% घाटे के साथ बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 1097 यानी लगभग 1100 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 78,919 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी बिकवाली तेज रही और कारोबार के अंत में निफ्टी 315 अंक कम होकर 24,450 दर्ज हुआ. बाजार की शुरुआत ही कमजोर आज रही. अमेरिका और एशियाई बाजारों से कमजोरी के संकेत मिले. भू राजनीतिक तनाव बढ़ता हुआ दिखा. कच्चे तेल के दाम बढ़ गए और विदेशी फंडों ने अपनी बिकवाली जारी रखी. इस बीच बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर दबाव बना और बिकवाल हावी हो गए.
बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस क्लोज्ड अराउंड 1.3% लोअर टुडे, रिवर्सिंग द रिबाउंड सीन इन द प्रीवियस सेशन. बेयरिश सेंटिमेंट क्रिप्ट द मार्केट्स अमिड कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी एंड नो साइंस ऑफ ईजिंग इन वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट. द सेंसेक्स टैंक्ड 1,097 points to close at 78,919, while the Nifty dropped 315 points to settle at 24,450. Earlier today, markets opened with cuts, tracking weak cues from US equities and a subdued trend in Asian markets. The Sensex and the Nifty remained under pressure throughout the session, weighed down by geopolitical tensions, higher crude oil prices and foreign fund outflows. Selling intensified across banking and financial services stocks in the final half hour of trade, pushing both the indices deeper into negative territory.
सेंसेक्स पैक की 30 में से 24 कंपनियां आज घाटे में रहीं. अच्छी बात यह रही कि 6 कंपनियों को लाभ भी हुआ. इटरनल और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के शेयर 3.4% नुकसान के साथ बंद हुए. एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक शेयर दोनों को 2.6% के आसपास घाटा उठाना पड़ा. एचडीएफसी बैंक के शेयर 2.4% लुढ़क गए. लाभ उठाने वाली गिनी चुनी कंपनियों में सम्मिलित रही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके शेयर 1.8% से अधिक मुनाफे के साथ बंद हुए. रिलायंस को 1.1% का मुनाफा हुआ. सन फार्मा के शेयर लगभग 0.7% लाभ के साथ बंद हुए.
Among the sectoral indices at the BSE, 21 out of 24 sectors registered downward move. Major laggards included top 10 banks, which dropped almost 2.4%. Private banks fell 2.25%. And financial services slipped over 2.1%. Among the top gainers, capital goods advanced 1.3%, power added over 0.4%, and industrials rose marginally. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,304 companies declined, shares of 1,895 companies advanced, and shares of 175 companies remained unchanged.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 15 पैसे कमजोर हुआ, 91.75 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 99.22 पर चल रहा था. सुषमा जी, बाजार में हमने कल थोड़ी सी उम्मीद की किरणें देखी थी, आज फिर वो धूमिल होती नजर आई और बाजार अच्छे खासे घाटे के साथ बंद हुआ है. क्या प्रमुख कारण आज की गिरावट के पीछे?
देखिए, ये प्रमुख कारण आपने अपनी खबरों में ही इनके बारे में बात की है, आपने जाहिर किया है. ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, तेल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो शेयर्स बेचना और बाहर निकलना हमारे देश से. लेकिन सबसे बड़ी बात हमें मालूम है कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही हैं, यो इसराइल और यूएस का जो हमला हुआ है ईरान की तरफ, और ईरान का वापस हमला ना बल्कि सिर्फ इसराइल के ऊपर लेकिन आसपास के सारे वेस्ट एशिया देशों के ऊपर. और उसके बाद ये भी खबर आई कल की, वो एक जो एक शिप हमारी मिलिट्री, ईरान का एक जो मिलिट्री शिप हमारे देश के आसपास इंडियन ओशन में रहा, उसके ऊपर भी अटैक हुआ. तो ये जो चीजें, मतलब हमारे देश के पास आ रही है,
इन आवर ओन बैकयार्ड.
बिल्कुल, द वॉर हैज कम इनटू आवर ओन बैकयार्ड. हालांकि वो इंटरनेशनल वाटर्स में टेक्निकली है, लेकिन श्रीलंका और इंडिया के बिल्कुल पास में ये हुआ. और सबसे बड़ी बात है, ये जो वेसल है, ये इंडिया ने ही इनको बुलाया था अपनी वो इंटरनेशनल मैरिटाइम जो
एक्सरसाइज,
नेवल एक्सरसाइजेस के लिए बुलाया था. और एक और शिप वहां, खबर ये भी आई है कि वो श्रीलंका में आ गई है, कि भाई हमें हमें जरा शरत हमें हमें आप प्रोटेक्ट करें, शरण में आए श्रीलंका की. तो ये जो चीजें हैं, ये जो वॉर है, बिल्कुल हमारे पास आ रही है. और मार्केट्स बिल्कुल ठीक, इनका अंदाजा ठीक है कि ये अभी बहुत जल्दी ये बंद नहीं होने वाली है, और ये हिली हुई हैं मार्केट्स. ये बहुत बड़ी वजह है कि आज 1100 पॉइंट्स ये मार्केट गिरी है.
Sushma ji, if I talk about specific sectors, then I read earlier in the program that banking and financial services sectors were the biggest hit. If you look at it, sector-wise also at BSE, the top 10 banks were the major laggards. They dropped almost 2.4%. So what is it that's ailing this? Why is it that we're seeing this intensified selling across banking and financial services sector?
Well, this is a bear market, which is largely due to, as I said, geopolitical tensions and the institutions that are likely to be affected in case of any impact on the economy are definitely the financial sector. So that is, although till now you would have seen that the banking sector has been more or less insulated from a lot of the bearish trends in recent times.
Right.
The banking sector has stood out for a very good performance. But now, because it looks this could have an impact on the Indian economy, it could not have also. We hope for the best. But if there is going to be an impact on the Indian economy, definitely the financial sector would be impacted.
Do you think that's also because you're talking about, it just struck me that, we get a lot of big amount of remittances from the West Asia region. A large part of our population is working there, living there. So that could also be the reason that, we are seeing this kind of selling or the banking and financial services sector being impacted.
Well, that is one element of it, definitely. But I mean, banks deal with many other issues. Yeah. Now, the banks also deal with purchases of crude oil, for instance.
Okay, right.
And they also, of course, remittances is a big factor. But they also deal with investments all over the world. And we have very close economic ties with West Asian countries, right. Whether it is UAE, whether it is Bahrain, Qatar and Oman. We are importing large amounts of petroleum and natural gas from Saudi Arabia and all these countries. And there is, the banking sector is definitely deeply involved in these transactions.
Sushma ji, yuddh ki aahat apni chokhat darwaze ki kuch hi duri par, iski aanch ya aag, कह लें कि इसी तरह दुनिया भर में फैलती हुई विशेष रूप से पश्चिम एशिया के कई देशों में इसकी धमक और आग दोनों देखी जा रही है. ऐसे में जो छोटे निवेशक हैं, हमारे श्रोता हैं, जो लगातार सिप के जरिए बाजार में बने हुए हैं, उन्हें किस तरह हिम्मत बढ़ाना चाहेंगी या राय देना चाहेंगी कि ऐसे माहौल में उन्हें अपना व्यवहार क्या रखना चाहिए?
देखिए, ये ऐसी स्थिति है इस वक्त कि हमें दूर की सोचनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्थिति है, ये मुझे लगता है कि ये हो भी सकता है कि ये युद्ध एक दो दिन या दो तीन हफ्ते में खत्म हो जाए. ये भी हो सकता है कि और लंबे समय तक ये रहे. तो इस वक्त जो है निवेशक को अपना लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनीज इस वक्त कॉर्पोरेट्स उनके जो शेयर प्राइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस शायद धीमी पड़ जाए, क्योंकि किसी वजह से उनकी जो लिंक्स हैं इंटरनेशनल कंपनीज से या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वजह से, तो इस वक्त उनका हाल ठीक नहीं होगा. लेकिन जब हालात ठीक हो जाएंगे तो ये कंपनीज भी वो भी वापस आ जाएंगी इन द ब्लैक. और मेरे ख्याल में जस्ट लॉन्ग टर्म इस वक्त अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त टू टेक शॉर्ट टर्म अप्रोच मे नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द इन्वेस्टर्स.
यानी श्रोताओं, बेशक स्थितियां प्रतिकूल दिख रही हों और दुनिया में आग फैलती नजर आ रही हो, लेकिन इन सब के बीच भी उम्मीद की किरणें हमेशा मौजूद रहती हैं, और धीरज के साथ बने रहना लंबे अरसे में नॉशनल नुकसान या लाभ दिखेगा, आपको बहुत अधिक घाटा नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसा फिलहाल लग रहा.
बट हियर आई वुड लाइक टू आस्क यू नो वन मोर थिंग सुषमा जी. धीरज, मनोज ने कहा कि धीरज रखना बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स ऑल्सो टू डू विद योर रिस्क एपिटाइट. इफ यू हैव द रिस्क एपिटाइट फॉर इट, वुड यू से दैट दिस इज मोमेंट यू नो वेन यू कैन यू नो get into the market and buy on dips? Again, like I said, it all depends on the individual. Yes, it depends on what their long-term and short-term goals are, even mid-term goals are, and how much of a risk appetite they have.
Yes, 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 of course. But, you know, you need to be very well informed.
Yes.
And you need to be a little more, I would not advise this for people who have come into the market recently.
Yes, definitely.
Those who have been there for a very long time and you are looking at each company.
Right.
And you are very right, of course. You can buy on the dips which are taking place right now, but even then I would say broadly that you should take a long-term approach, because the fluctuations in the market are going to remain there for I think a few weeks.
And I would just like to remind our listeners again at this point, because as we always do at the beginning of this program, that they have to take their own decisions, they have to take their own informed decisions based on their research, instead of of course we are there, our experts are there who are going to tell them what can be done, what they can do, but still at the end of the day it's each person has to decide on their own aims and their own targets and their own decisions. Right.
यानी लहरों की सवारी करने की यदि मन में है इच्छा तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सोचकर समझकर और कंपनियों की माली सेहत और आने वाले दिनों में कैसे होंगे आसार, ये जानबूझकर फैसला आपका, फायदा आपका, नुकसान भी आपको ही होगा. आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर प्रमुख बाजारों में लाभ दिखी है. शुरुआती कारोबार में एशियाई बाजारों में कमजोरी थी, लेकिन बाद में खरीदारी हुई और प्रमुख शेयर बाजार बढ़त में रहे. हांगकांग का हेंगसेंग 1.7% लाभ के साथ बंद हुआ. जापान के निक्की 225 में 0.6% से अधिक की वृद्धि हुई. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.4% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स मामूली बढ़त में रहा। वो दक्षिण कोरिया को देखें तो वहां बिना किसी खास बदलाव के लेकिन थोड़ा सा ऊपर की ओर उठकर कोस्पी सूचकांक बंद हुआ है। यूरोप की ओर चलें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में नरमी बनी हुई थी, बिकवाल बाजार पर हावी थे। समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 41% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। जर्मनी के डैक्स में 0.9% की गिरावट थी और लंदन का फुटसी 100 भी 0.6% से नीचे चल रहा था।
Let's move on to the US markets. Major US indices dropped yesterday as persistent tensions in West Asia and rising crude oil prices dampened investor sentiment. Growing concerns about inflation and whether the Federal Reserve would cut interest rates further added to market uncertainty. The Dow Jones Industrial Average lost 1.6%. The S&P 500 dipped over 0.5% and Nasdaq Composite Index fell more than 0.2%. On the economic front, the number of Americans filing new applications for unemployment benefits remained unchanged at 213,000 last week, according to data released by the U.S. Department of Labor. Sushma ji, we are talking about the fact, you know, I just said that whether the Fed Reserve would cut interest rates further, and the meeting is later this month on the 17th and 18th of March, when the Fed's FOMC is going to meet. So what are your expectations? Because obviously the biggest worry for every Fed, you know, for every central bank is going to be inflation. So what is your what do you think is going to happen or may happen?
Well, with this war in place, you are going to have inflationary pressures on the US economy, especially as far as crude oil is concerned. And unlike in India, in that country, the pass through of the price increase is immediate, you know. So you're going to have an immediate rise in gasoline prices, which is what they call petrol over there. So that is going to have an impact. Is that going to influence the Fed? We have to see, because this has just started. It's just been a week. So to make an assessment of that right now would be difficult. Yeah. Depends how long the war continues. As of now, it looks as if negotiations are completely off the table, with Iran is certainly has said that every time we start negotiations, we face attack. But you never know what's going to happen. This is a very dynamic and developing situation.
Right. यानी बड़ा ही डायनामिक, यानी बिल्कुल तरल अवस्था भी दुनिया की चल रही है, जिसमें लहरें किस दिशा में जाएंगी ये आंकना कठिन। लेकिन ऐसे में भी विश्व अर्थव्यवस्था कहां जाती दिख रही है, खासतौर से अमेरिका को ध्यान में रखकर, जहां पर कि वहां की उच्चतम अदालत ने ये कहा कि जो पैसे वसूले गए वो कंपनियां वापस लेने के लिए आ सकती हैं। तो ऐसे में अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था कहां जाती दिख रही है?
विश्व अर्थव्यवस्था इस वक्त उसका, मैं समझती हूं, हालात इस वक्त बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर आप देखें कि पहले जो जो 12-day वॉर हुआ था, जिसमें अमेरिका ने अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, वो बड़ा लिमिटेड था और ईरान ने बहुत हल्का फुल्का जवाब दिया। अब तो ईरान ने इतने सारे देशों को इस युद्ध में लपेट लिया है, तो ये देश जो हैं, ये जो एरिया है, इसमें हमारी ये बहुत बड़ा सोर्स है, हमारे एनर्जी का सोर्स है, ऑयल रिजर्व्स, नेचुरल गैस सब वहीं से आ रहे हैं। हालांकि अभी एक ट्रेंड है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। इंडिया में 40% इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी अभी हो गई है रिन्यूएबल एनर्जी की, लेकिन अगर आप विश्व भर में देखें, फिर भी हमारा जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, और यही एक क्षेत्र है वेस्ट एशिया जहां से ये आता है। उसके आगे देखें, ये अब ये जो देश हैं, इन्होंने अपने और भी जो आर्थिक स्थिति है उन्होंने उसको बहुत मजबूत कर लिया है। वहां पर उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उन्होंने बना दिया है, सर्विसेज बना दिया है। दुबई की बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां है, और दूसरे जगह कतार भी और ओमान ने भी अपना डेवलपमेंट किया है। तो ये एक इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ गया है दुनिया में, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका बहुत बढ़ गया है. तो अभी जैसे आपने हमने ये स्टॉक मार्केट्स की देखा है, यूरोप के स्टॉक मार्केट्स नीचे गए हैं, अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स जो इतने बुलिश थे, एआई बबल की जो बात हो रही थी वो भी ढीले पड़ गए हैं. तो सिर्फ एशिया में थोड़ी सी स्टॉक मार्केट्स अभी ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया वॉर से काफी दूर है. हाँ, हालांकि इसका इम्पैक्ट जो है वहां भी पहुंचेगा. तो और इंडिया को देख लो, इंडिया की जो संबंध है वेस्ट एशिया के साथ सिर्फ तेल की नजरिया से नहीं देखना चाहिए. एक तो हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है, दूसरा हमारे बहुत ज्यादा ट्रेड है, यूएई हमारा तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. तो इस हिसाब से आपने कहा विश्व भर की जो आर्थिक स्थिति है वो इस वक्त बहुत बहुत अच्छी नहीं दिख रही.
इन अ फ्लक्स.
हाँ बिल्कुल.
यानी मध्य एशिया पर यदि हम चर्चा करें तो वहां पर हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें अहम योगदान वहां से आने वाली धनराशि का होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हमारे नागरिक वहां मेहनत कर रहे और घर पैसा बचाकर भेज रहे. यहां विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर बड़ी अच्छी खबर है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान 4,88,00,000,000,000 से अधिक बढ़कर 728,49,00,000,000,000 से ऊपर पहुंच गया, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक स्वर्ण भंडार का मूल्य 4,14,00,000,000,000 से अधिक बढ़कर 131,33,00,000,000,000 पर पहुंच गया. विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा पर संपत्तियां FCA $561 मिलियन बढ़कर 573,12,00,000,000,000 पर पहुंच गई. डॉलर के संदर्भ में व्यक्त किए जाने वाले FCA में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे यूरो, पाउंड और येन सहित गैर अमरीकी मुद्रा इकाइयों के मूल्य में वृद्धि या ह्रास का प्रभाव भी सम्मिलित होता है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थिति भी $158 मिलियन से अधिक बढ़कर 4,87,00,000,000,000 पर पहुंच गई. विशेष आहरण अधिकार यानी STR का मूल्य $26 बिलियन से बढ़कर 18,86,00,000,000,000 पर पहुंच गया. विदेशी मुद्रा भंडार श्रोताओं हर देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, इससे वहां के आर्थिक स्वास्थ्य का स्पष्ट संकेत मिलता है, साथ ही यह एक स्थिर मुद्रा विनिमय दर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यहाँ सुषमा जी आपके लिए सवाल, विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना सर्वोच्च स्तर पर पहुंचना हमारे लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन यह किस रूप में प्रभावित करता है हमारे श्रोता समझना चाहेंगे.
देखिए ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स से हम जनरली ये कहते हैं कि कितने महीनों का हमारे पास रिजर्व है जिससे हम इंपोर्ट कर सकें. तो ये मेरे ख्याल में अभी ये इतना नहीं कह सकती, लेकिन कई महीनों का अब हमारे पास है, मतलब हम वी आर वेरी कंफर्टेबल. और दूसरी बात ये है कि जो हम जैसे खरीदना चाहते हैं, अभी हम तेल की खरीदारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास हमारे रिजर्व्स इतने कंफर्टेबल हैं कि हम जो अभी दाम भी बढ़ जाएं तो हम आराम से अब अगले 2-3 महीनों में ये जो खरीदारी हम कर सकते हैं. तो इससे हमें हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की कोई इस वक्त क्राइसिस नहीं है, इनफैक्ट वी आर वेरी कंफर्टेबल.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर यानी कृषि निर्यात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्च मूल्य कृषि उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया गया है. प्रधानमंत्री ने कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए आज कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में वर्तमान काल में खाद्यान्न, दलहन और तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है.
दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है, हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है. एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है. इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है.
Let's move on to the next story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that the government will use every policy tool and export promotion mission to support the country's exporters. Talking to media in New Delhi about trade disruptions amid US-Israel and Iran conflict, the minister said that the government has set up an interministerial group to look into the issues on a daily basis. Mr. Goyal said that the Commerce Ministry is in dialogue with the Ministry of Shipping and with shipping companies on the issues of exporters.
Every day the interministerial group talks to the exporters, and we will not be found wanting in supporting our exporters in any way. We should continue to meet all the commitments that we have made to our buyers, whether in goods or services. And the government will use every policy tool and the export promotion mission to support our exporters. I have already given some instructions in the last 2 days also. Today we'll be formalizing some ways to give comfort to our exporters.
Sushma ji, I want to come to you first, you know, on the story that Manoj read about the Prime Minister's, he addressed a webinar today on, he stressed on the need for chemical pre-farming and natural farming with a focus on exports. At this point in time, you know, because India is, of course, agriculture is a very important part of our economy.
Yes.
And we have been trying to diversify our agreed exports. So in that context, what role can chemical free farming and natural farming play, and you know how important it is?
I think it's what is very important is the value addition when you are talking about exports. Instead of exporting, just a grain or just a fruit, we should be processing them and making them into value added products and exporting them. And that's what everybody is doing. And therefore, along with the, and chemical free and natural farming is the need of the hour as far as the world is concerned. Everyone wants it. So if we can provide that, but as I said, value addition is important. We need to set up units that can process these agricultural products near the farm end, and this would also help in enabling us to pass all the sanitary and phytosanitary regulations that are laid down by various countries.
Let's move on to commodities. Global crude oil prices extended gains today as the conflict in West Asia entered its seventh day. Brent crude was trading 4.5% higher at $89.29 per barrel, and WTI crude was trading nearly 6% up at $85.87 per barrel when reports last came in. A very quick comment, Sushma ji, because we see that 4.5% now at the moment, like you just said, that foreign reserves indicate that we are in a comfortable position. But if this goes on, how will it impact our economic growth? Because, you know, we are one of the fastest growing economies in the world. So definitely it may have some impact on it.
Well, the official sources have been saying that we are comfortably placed as far as reserve petroleum reserves are concerned. We have enough stocks. But I think it is important to see the pace at which this has been in, world prices have increased. Brent crude was about just a week ago, it was $70, now $89. So this is something that, of course, the government will be watching very carefully.
भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 160,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. चांदी 0.4% बढ़कर 263,670 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी. और एमसीएक्स में सोना अप्रैल आपूर्ति वाला 160,058 रुपए पर चल रहा था प्रति 10 ग्राम. यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू मनोज.
Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices decline, Sensex falls nearly 1,100 points, Nifty settles at 24,450. India's foreign reserves surged to all-time high of nearly $729 billion, and global crude oil prices surge. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.